नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
गीतामृत कार्यक्रम में सबका स्वागत है। हमारा नया साल का रेजोल्यूशन है कि हम गीतामृत 7:30 बजे चालू करेंगे, और आप लोगों के सहयोग से हो सकता है कि हम ये रेजोल्यूशन को पूरे साल भर और आने वाले सालों में भी पालन कर सकें। तो इसलिए आपका सहयोग आवश्यक है इसके लिए। तो तीसरा अध्याय जिसमें भगवान अब श्रेष्ठ या आचार्य की परिभाषा दे रहे थे, और श्रेष्ठों की और आचार्यों की परिभाषा देते हुए भगवान ने अब अर्जुन को अपने स्वयं का उदाहरण दिया, क्योंकि श्रेष्ठों में आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं स्वयं भगवान। तो अर्जुन के लिए अब भगवान श्री कृष्ण जो उनके समक्ष खड़े हैं उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं, और पूरे विश्व के लिए भी भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं। तो यदि भगवान अपने स्वयं का उदाहरण अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा हम सबको प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं जो सर्वश्रेष्ठ हूं, श्रेष्ठों को तो छोड़ दीजिए, कि मैं जो सर्वश्रेष्ठ हूं मैं कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं, तब फिर सामान्य जन को क्या करना है इसके बारे में कोई आशंका ही नहीं होनी चाहिए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा नमे पार्थास्ति कर्तव्यम, कि हे पार्थ, मुझे न तो किसी वस्तु की आवश्यकता है न किसी कर्म को करने की विवशता है, परंतु फिर भी मैं कर्तव्य कर रहा हूं, फिर भी मैं नियत कर्म कर रहा हूं। क्यों? तो कर्तव्य की विशेष परिभाषा भगवान ने अपने उदाहरण के द्वारा यह प्रस्थापित की कि जब कर्तव्य करने की कोई आवश्यकता न हो और कोई विवशता न हो, नो नेसेसिटी नो बॉन्डिंग, उसके बावजूद यदि कोई कर्तव्य कर रहा है तब उसकी जो श्रेणी है वो श्रेणी इतनी ऊंची बताई गई है कि कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता। अर्थात वो जो उदाहरण प्रस्थापित कर रहा है वो उदाहरण वो हर समय नित्य काल तक प्रस्थापित रहता है, और यही है भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण। तो अब कर्तव्य की ऐसी विशेष परिभाषा देने के पश्चात भगवान अब उसी कर्तव्य की आगे व्याख्या करते हुए आज के श्लोक में कहते हैं यदि यहम न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। पूरे श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो आज का श्लोक मानो अर्जुन कि एक और प्रश्न का उत्तर है। तो अर्जुन का पहला प्रश्न ये कि आपने जो श्रेष्ठों और आचार्यों की परिभाषा दी, तो मेरे लिए तो आप सर्वश्रेष्ठ हो, तो क्या आप अपने विषय में कुछ कहना चाहोगे? तो पिछला श्लोक क्या था? अर्जुन के इस सवाल का जवाब था। अब मानो उस जवाब के पश्चात अर्जुन एक और सवाल पूछें कि ठीक है, यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन यदि न करो, नियत कर्मों का पालन यदि आप न करो, तब उसका परिणाम क्या होता है? तो अर्जुन कुछ भगवान पर डाउट नहीं कर रहे। अर्जुन जनरली जो लीडर या सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ या आचार्य जो हैं, वो यदि पालन नहीं करते अपने कर्तव्यों का, तो कर्तव्यों का पालन नहीं करने के वजह से, या जिसको हम एक शब्द में कहेंगे गैर जिम्मेदार होने के वजह से, उसका परिणाम जन समुदाय के ऊपर क्या होता है? यह अर्जुन का प्रश्न है। तो यहां पर ध्यान में रखना चाहिए कि जो लोग ये कहते हैं ना कि ये अर्जुन की समस्या थी और अर्जुन की व्यक्तिगत समस्या को दूर करने के लिए भगवान ने गीता सुनाई, कई लोगों की ये दलील है कि भाई हम क्यों नाक अपनी डालें, अर्जुन की कुछ व्यक्तिगत समस्या थी और वो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी समस्या प्रस्तुत किए और भगवान ने अर्जुन की व्यक्तिगत समस्या दूर की, तो भाई हम को इससे क्या लेना देना। यहां पर देखिए दोनों जो चर्चा कर रहे हैं इन श्लोकों से समझ में आ रहा है कि दोनों की चर्चाओं में वो चिंता व्यक्त करते हैं, जन समुदाय हम सब की चिंता। तो इसमें अर्जुन का जो विशेष गुण दिख रहा है कि ऐसा नहीं कि अर्जुन ने एक श्लोक सुना और अर्जुन अब कहे कि अब जल्दी जल्दी आगे का सुनाओ, जल्दी जल्दी बताओ कि जो मैंने प्रथम अध्याय में आपको इतने सारे प्रश्न पूछे युद्ध नहीं करने के करने के, अब उसके वो पॉइंट पे आओ, ये सब कहां आप जा रहे हो श्रेष्ठों और आचार्यों के बीच में। ध्यान में रखना है कि स्थिति क्या है, कुरुक्षेत्र की रणभूमि, शंख बज चुके हैं और अभी तक हम तो पिछले 3 साल से चर्चा कर रहे हैं, तो हमें यह समझना है कि पिछले 3 साल से हम भी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े सुन रहे हैं, भूलना मत, बैठे सुन रहे हैं कुर्सी पर। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन चिंता कर रहे हैं भविष्य में जो आने वाले जन समुदाय हैं उनकी, और इसलिए अर्जुन ऐसे ऐसे डिटेल्ड प्रश्न पूछकर भगवान से और ज्ञान हमारे लिए मिल सके हमको, इसकी चेष्टा कर रहे हैं। तो आज के श्लोक के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिस पर हम चर्चा करेंगे, अतंद्रित जातु अनुवर्तन्ते और मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो यहां पर सबसे पहले अतंद्रित शब्द की व्याख्या, ये संस्कृत का शब्द जो कि तंद्रा इस शब्द से बना है। अब देखिए तंद्रा यहां पर लिखा गया है, एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग तंद्रा का ऊंगना। अब कई बार ये हिंदी का ये भी वर्ड बहुत ओवरहेड ट्रांसमिशन हो जाता है, इसका ये भी ऊपर चला जाता है। तो हम फिर से दोहराना चाहेंगे, जो भी मोबाइल फोन साइलेंट करना नहीं जानते वो यहां पर ले आइए, हम उसको साल भर के लिए साइलेंट कर देंगे। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगा। पिछले साल मैं जब यूके के प्रीचिंग ट्रिप में गया था तो वहां पर एक भक्त मुझे मैनचेस्टर के पास एक बहुत बड़ा कैथीड्रल है तो मुझे वो कैथीड्रल में लेकर गए। इतना पुराना कैथीड्रल, देखने लायक, जहां पर सब जो क्रिश्चियन सेंट्स और उनके सब के वहां पर अलग अलग कोर्ट्स वगैरह वो सब दिखाने के लिए ले गए, और उसका जो आर्किटेक्चर, तो हम लोग गए, बहुत बड़ा कैथीड्रल, 500 साल पुराना। और जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक लेक्चर चल रहा था, तो जो उनके वहां के हेड प्रीस्ट वो लेक्चर दे रहे थे और कुछ ऑडियंस बैठे थे, तो मैम हम भी बैठ गए कि सुनते हैं लेक्चर चल रहा है, तो कैथीड्रल में बैठ गए हम। तब हुआ क्या कि लेक्चर के बीच में एक सेलफोन बजा और वो एक महिला का था, और वो महिला सेलफोन पर बातें करना शुरू कर दिया। साइलेंट करना तो दूर, खुद भी साइलेंट नहीं रही, तो यहां पर वो लेक्चर दे रहे हैं और वो महिला बातें कर रही है जिससे भी बातें कर रही थी। तो इतना डिस्टरबेंस हो रहा था, वो कैथीड्रल इतना बड़ा और उसके अंदर इतनी शांति, कोई ऐसे बच्चे बाहर आवाज कुछ नहीं कर रहे थे, एकदम शांति थी। तो उसकी जो आवाज है सेलफोन पर बात करने की, और ज्यादा प्रोमिनेंटली सुन रहे, सबको सुनाई दे रही थी। तो वो हमारे हेड प्रीस्ट जो लेक्चर दे रहे थे, डायस के ऊपर थे, डायस से वो उतरे, तो मुझे थोड़ा लगा कि शायद अभी कुछ यहां पर होने वाला है, प्रवचन के अलावा और कुछ होने वाला है। तो डायस से उतरे, वो महिला जो सेलफोन पर बात कर रही थी उसके पास गए, उनका सेलफोन छीना, सेलफोन छीन कर उनके सामने और सबके सामने जमीन पर पटक कर दो टुकड़े कर दिए उसके। हरे कृष्ण। तो मैं खाली बताना चाह रहा था कि ये पिछले साल ही मैंने आंखों देखा हाल कि बहुत ही यूनिक तरीका सेलफोन को साइलेंट करने का, और उन महिला को भी साइलेंट करने का। तो हम ये कहना चाहेंगे कि यदि सेलफोन ऐसे ही बजते रहे तो हम वो कैथीड्रल के हेड प्रीस्ट को लेकर आएंगे। तो तंद्रा, तंद्रा का अर्थ ऊंगना। अब देखिए, ये आज के श्लोक में इसका एक बाहरी अर्थ है और एक आंतरिक अर्थ है, एक्सटर्नल मीनिंग और इंटरनल मीनिंग। यहां पर बहुत ही बाहरी स्तर पर क्या समझ में आ रहा है, हम आपको समझाएंगे ऊंगना क्या होता है। अब देखिए, यहां पर ऊंगना को बताया गया है कि न तो इस अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से सोया रहता है, न पूर्ण रूप से जगा रहता है, जैसे लेक्चर में होते हैं। तो उसको कहेंगे ऊंगना, उसको कहेंगे तंद्रा। हमारे लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, आपको एक 1.5 मिनट का वीडियो दिखाएंगे तंद्रा के ऊपर, तो आपको ठीक ठीक समझ में आ जाएगा कि तंद्रा क्या होता है। इट इज इन बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप, नॉट कंप्लीटली अस्लीप, नॉट कंप्लीटली अवेकन्ड स्टेज, इन बिटवीन। स्लाइड स्लाइड सुन। तो इसको कहते हैं तंद्रा। अब देखिए कि ये कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था, इतना छोटा सा बालक, इसको कोई सिखाया नहीं जा सकता है कि ऐसे एक्टिंग करो। तो सोचिए खाते समय उसको नींद भी आ रही है और खा भी रहा है। जैसे हम लोग इस्कॉन में बहुत माहिर हो जाते हैं कि चलते चलते सो सकते हैं चैंटिंग करते करते। तो चैंटिंग भी हो रहा है, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, मल्टीटास्कर जिसको बोलते हैं, मल्टीटास्कर बन जाते हैं। तो ये जो तंद्रा की स्थिति है, जिसके अंदर होता क्या है कि व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में आकर वो उसकी जो इंद्रियां वृत्तियां हैं, जैसे हमारे शरीर की अलग अलग वृत्तियां हैं, हमारे आंखों की वृत्ति है देखना, हमारे जिह्वा की वृत्ति है कुछ चखना, कर्णों की वृत्ति है सुनना इत्यादि। तो ये हमारे इंद्रियों की वृत्ति है, इसको इंद्रिय वृत्ति कहते हैं। तो जब व्यक्ति तंद्रा में जाता है तो इंद्रियों की जो वृत्ति है वो एक इन बिटवीन स्टेज में चली जाती है। इन बिटवीन स्टेज क्या होता है कि जब नींद आना शुरू होती है, जैसे कि ये छोटा सा बालक ये बैठा है, खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इसको नींद भी आ रही, भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही, तो इसकी जो इंद्रिय वृत्ति है वो दोनों कंफ्यूज्ड है अभी कि कितना खाना है कितना सोना है, तो दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो तंद्रा के समय व्यक्ति जैसे ही उस ओंगने की अवस्था में जाता है तो होता क्या है, भगवान यहां पर क्यों बता रहे हैं, इस शब्द को क्यों इस्तेमाल किया भगवान ने, अतंद्रित, जो कि जिसके अंदर तंद्रा ये वर्ड आया, कि भगवान ये बता रहे हैं कि व्यक्ति तंद्रा की स्थिति में सावधान भी रहता है और असावधान भी रहता है। ही इज अलर्ट ऑल्सो एंड इज नॉट अलर्ट ऑल्सो, दोनों एक साथ। तो अब यदि तंद्रा के हम दो अर्थ लें तो एक है स्थूल स्तर पर और एक है सूक्ष्म स्तर पर, असावधानी और आलस्य। तो आलस्य जो है वो बहुत स्थूल स्तर पर है, जैसे कि वो छोटा सा बच्चा गिर रहा था और उसकी आंखें बंद थी, गिर रहा था, ये स्थूल स्तर पर। और फिर सूक्ष्म स्तर पर क्या है कि उसे कुछ पता नहीं कि उसकी कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, बिल्कुल असावधान, टोटली नॉट अलर्ट, नेग्लिजेंट, इग्नोरेंट। तो यहां पर भगवान ये जो बता रहे हैं कि जब कोई श्रेष्ठ, जब कोई आचार्य, और यहां भगवान अपने स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं कि मुझ जैसा सर्वश्रेष्ठ यदि तंद्रा में चला जाए, तंद्रा का अर्थ है यदि मैं अपने कर्तव्यों को करने में आलसी हो जाऊं या असावधानी बरतूं तो उसका परिणाम क्या होता है, यह अर्थ है अतंद्रित। परंतु अतंद्रित के पहले भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया है जातु कर्मण्य अतंद्रित, आज के श्लोक में ये जातु। तो जातु का अर्थ श्रील प्रभुपाद ने कहा है कभी कभी। तो अब मानो कि अर्जुन ये पूछे कि ठीक है भगवान, ऐसा तो कोई होगा नहीं कि जो कभी तंद्रा में न जाए। अब कभी कभी तो तंद्रा आ जाती है ना, चाहे कोई कितना भी सोया हो, चाहे कोई कितना भी अपना मुंह धोकर आया हो, फिर भी चैंटिंग करते समय या सुन हियरिंग करते समय हो सकता है 3 घंटे के लेक्चर में 1 मिनट या 30 सेकंड के लिए उसको थोड़ी सी तंद्रा आ जाए, उसको कहते जातू कभी कभी, तो वो तो माफ हो जाएगा ना। अरे भाई इतना जो उसने 3 घंटा जो भी कुछ सुना होगा, चैंटिंग किया होगा, जो भी कुछ किया होगा, उसमें बस एक क्षण के लिए अगर उसको तंद्रा आ जाए। तो अर्जुन का ये प्रश्न एक है स्थूल स्तर पर और एक है सूक्ष्म स्तर पर। तो सूक्ष्म स्तर पर अर्जुन का प्रश्न क्या है कि कोई सर्वश्रेष्ठ है या कोई श्रेष्ठ है, वो अपने पूरे जीवन भर कर्तव्य का पालन करता है, परंतु कभी अगर वो कुछ एक क्षण के लिए असावधान हो जाए, तंद्रित हो जाए, तो क्या वो उस श्रेष्ठ स्तर पर रहने के लायक है या नहीं? और विल ही बी ट्रीटेड मर्सीलेसली रूथलेसली जस्ट बिकॉज ऑफ अ मोमेंट्स इनअटेंशन? असावधानी का मतलब क्या है? इनअटेंशन, अ मोमेंट्स ऑफ इनअटेंशन, क्या उसके लिए भी उसको उत्तरदायी होना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं, अर्जुन ये समझ रहे अभी धीरे धीरे तीसरे अध्याय में कि कुछ समय के लिए अर्जुन अब तंद्रा में चले गए थे, तो अर्जुन अब अपने विषय में भी पूछ रहे हैं कि मैं ये जो कुछ समय के लिए असावधान हो गया मेरे कर्तव्य के विषय में, तो क्या मैं उसके लिए इतना बड़ा उत्तरदायी ठहराया जाऊंगा या गैर जिम्मेदार ठहराया जाऊंगा? ये अर्जुन का सूक्ष्म प्रश्न है। तो हम, क्योंकि भगवान ने ये शब्द आज के श्लोक में कहा है अतंद्रित या तंद्रा, तो हम पहले स्थूल स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे और फिर स्थूल स्तर पर समझने के पश्चात अपने आप जो सूक्ष्म अर्थ है आज के इस शब्द का श्लोक के समझ में आएगा। तो यहां पर हम उदाहरण लेते हैं एक ड्राइवर का, बहुत प्रशिक्षित ड्राइवर है, एक्सपर्ट ड्राइवर है और पिछले 40 सालों से ड्राइविंग कर रहा है और कभी कोई एक्सीडेंट नहीं, कभी कोई उसका ट्रैफिक का टिकट नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कितनी बार हम सुनते हैं कि जो एक्सपर्ट ड्राइवर्स भी होते हैं उनका जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट उन्होंने 40 साल ड्राइविंग किया हो, वो एक्सीडेंट का कारण क्या होगा? वो 40 साल का उनका एक्सपर्ट ड्राइविंग नहीं होगा, वन मोमेंट ऑफ इनअटेंशन। ड्राइवर का एग्जाम्पल क्या है? जस्ट वन मोमेंट ऑफ इनअटेंशन कैन डिस्ट्रॉय नॉट ओनली द ड्राइविंग ऑफ द ड्राइवर बट द ड्राइवर ऑल्सो। वन मोमेंट ऑफ इनअटेंशन। और सबसे डेंजरस ड्राइविंग के अंदर बताया गया है कि उसको ड्राइविंग आ रही होगी लेकिन अगर उसको तंद्रा, अगर वो तंद्रा में चला गया, क्योंकि तंद्रा निद्रा से डेंजरस है। क्यों तंद्रा निद्रा से क्यों डेंजरस है? क्योंकि अगर उसको निद्रा आ रही होती तो ड्राइविंग नहीं करता, सो जाता सीधा। लेकिन तंद्रा में उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मुझे नींद नहीं आएगी। अभी हाल ही में हमारे जो IMF यात्रा में हम लोग गए थे तो हम लोग कांचीपुरम एक कार में बैठे हुए थे और वो सुबह सुबह निकलना था हमको 5:15 बजे। तो मैंने देखा ट्रैवल्स की गाड़ी थी तो जो ड्राइवर सुबह 4:30 बजे आ गया, तो मुझे थोड़ा वो 4:30 बजे आ गया तो मुझे डाउट आया कि बाहर का कोई व्यक्ति इतनी जल्दी उठ के बिफोर टाइम कैसे आ सकता है। जनरली तो अगर आप सुबह 5 बजे किसी ट्रैवल्स की गाड़ी को बुलाओ तो हो सकता है कि वो 5:30 बजे आए, 6 बजे आए, क्योंकि वो कोई मंगल आरती अटेंड करने वाला रोज का इस्कॉन का भक्त नहीं था। तो मुझे डाउट आया कि ये बिफोर टाइम कैसे आ गया। खैर फिर मैंने उसको ज्यादा पूछा नहीं, हम लोग जब चालू किए निकले वहां से तो मैंने देखा वो रेयर व्यू विंडो में तंद्रा, उसकी आंखें बंद होना शुरू हुई। मैं कोई लेक्चर भी नहीं दे रहा था क्योंकि कई बार मुझे लगता है लेक्चर देते समय वो एक स्लीपिंग पिल जैसा काम करता है। मैंने कहा मैं यहाँ पे लेक्चर भी नहीं दे रहा हूं फिर भी ये तंद्रा में क्यों जा रहा है। तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तुम आज इतने जल्दी 4:30 बजे कैसे आए, क्योंकि जो मेरे को डाउट था कि इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, क्योंकि अगर ये सोया होगा तो सो के उठ के 4:30 बजे आना मुश्किल है जिसको आदत नहीं है, आदत होती तो भी मुश्किल हो जाता है। तो इसने कहा कि पूरे नाइट भर ड्राइविंग कर रहा था, ये कहीं और ड्राइविंग करके पूरे रात भर ड्राइविंग करके अब यहां पर वापस से। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत डेंजर है ये ड्राइवर, क्योंकि मेरे को तो फिर कॉन्स्टेंटली नरसिंह मारती गाता रहना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि तुमको कुछ चाय पानी पीना है बीच में रुक कर? बोला नहीं 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 मैं चलाऊंगा। और एक तो उसको भाषा नहीं समझ में आ रही थी, वो तमिलियन था, तो बहुत मुश्किल से उसको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं जेस्चर से कि तुमको ऐसी नींद आ रही है, ऐसे ऐसे समझा रहा था उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर ऐसी उसकी हालत खराब हो रही थी तो मैंने उसको कहा कि आप यहाँ साइड में बैठिए और आप आराम से सीट बेल्ट लगा के आप सोइए। और उसको साइड में बिठा के फिर मैंने ड्राइविंग किया, कोई उसकी सेवा नहीं कर रहा था मैं आके इधर गीतामृत कार्यक्रम वन पीस में दे सकूं इसके लिए। तो आप देखिए कि जो एक्सपर्ट ड्राइवर क्यों ना हो, एक क्षण की असावधानी के वजह से खत्म हो सकता है। तो ये एक स्थूल एग्जाम्पल है, इट्स अ ग्रॉस एग्जाम्पल तंद्रा शब्द के संदर्भ में। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई श्रेष्ठ है ये मत समझो कि उसका एक इनअटेंशन असावधानी उसका परिणाम नहीं होने वाला है, होने वाला है अवश्य। और भगवान कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पद पर है उसको एक क्षण के लिए भी तंद्रा में नहीं जाना चाहिए। तो भगवान बहुत ही हाई स्टैंडर्ड किसी श्रेष्ठ किसी आचार्य का प्रस्थापित कर रहे हैं आज के श्लोक के द्वारा खुद का उदाहरण देकर। तो अब सूक्ष्म अर्थ क्या है तंद्रा का या अतंद्रित का? तंद्रा का सूक्ष्म अर्थ हो गया गैर जिम्मेदार। तो जो अपने जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा रहा वो व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से तंद्रा में है। अब भगवान यहां पर हम यदि देखें कुछ असावधानी के उदाहरण कि शास्त्रों में थोड़ी सी असावधानी के वजह से कैसे भयावह परिणाम इनके जीवन में इनको भुगतने पड़े। महाराज नृग का उदाहरण है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए महाराज नृग, और ऐसे राजा ऐसे दानवीर राजा कि लाखों करोड़ों गौओं का दान किया करते थे वो ब्राह्मणों को इत्यादि। तो इनके जीवन की एक घटना कि एक बार इन्होंने ऐसे ही बहुत सारे गौओं का दान इन्होंने किया ब्राह्मणों को, एक ब्राह्मण को किया। अब उसमें से हुआ क्या कि एक गाय जो दान वो दे चुके थे वो पूरे लाखों गायों में से एक गाय इनकी गौशाला में वापस आ गई। किसकी गौशाला में? महाराज नृग की गौशाला में वो वापस आ गई। और महाराज नृग को पता नहीं चला कि कि ये गाय जिसको मैंने दान दे, और लाखों गायों में से एक थी वो, ऐसा नहीं कि कोई दो तीन गायों में से, तो महाराज ने पता लगा लेते कि अरे ये तो मैंने दान दे चुका था, मैं ये वापस कैसे आ गई, लाखों गायों में से एक वापस आ गई। और ये राजा थे, ये कोई गौशाला संभालने वाले ग्वाले नहीं थे, ये राजा थे। तो एक गाय आ गई और फिर वापस से जब ये दान दिए किसी दूसरे ब्राह्मण को, तो अब ये लौट में से जो लौट चुकी थी गाय वो चली गई। तो जो ब्राह्मण जिन्होंने पहले लौट की गायों का दान स्वीकार किया था उनको पता लग गया, वो आकर महाराज नृग को कहते हैं कि आपने मुझे दान दिया, अब वही दान वो दूसरे ब्राह्मण को आपने दिया, तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आप छिपकली बन जाओ। अब सोचिए आज की दुनिया में अगर कोई सबसे पहले कोई दान भी देता है और उसके उसको कोई उल्टा भी बोलने का प्रयास करता है तो ये व्यक्ति उसको श्राप दे देगा, तो भाड़ में जाते को एक तो दान दिया ऊपर से तू मेरे को श्राप देता है। तो ये उदाहरण कि महाराज नृग जो कि इतने बड़े राजा, क्यों इस ब्राह्मण ने श्राप दिया कि आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो और एक श्रेष्ठ व्यक्ति होने के बावजूद आप तंद्रा में चले गए, असावधानी बरती आपने, यू आर नॉट अटेंटिव वाइल गिविंग चैरिटी, यू आर नॉट अटेंटिव वाइल गिविंग एनी डोनेशन, सो देयरफॉर यू बिकम अ लिजर्ड। ये उनको श्राप मिला। फिर देवराज इंद्र इनका उदाहरण है कि इनकी आरती हो रही थी अमरावती में, इनकी आरती हो रही थी इंद्रलोक में, और उस समय इनके गुरु वो प्रवेश किए, बृहस्पति वो प्रवेश किए, तो भागवत में बताया गया है कि केवल एक नैनो सेकंड, एक नैनो सेकंड के लिए देवराज इंद्र अपने आसन से उठे नहीं उनका स्वागत करने के लिए, इट वॉज इन अटेंशन जस्ट फॉर अ नैनो सेकंड, और बृहस्पति वहां से रूठ कर चले गए, उन्होंने श्राप नहीं दिया, रूठ कर चले गए। और फिर उनको लगा कि अरे मैं इन अटेंटिव रहा इतने से समय के लिए, और फिर राक्षसों ने यह पता लगा लिया कि इंद्र ने गलती की, कितने समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, आधे क्षण के लिए गलती की, अटैक करो क्योंकि अभी शक्ति चली गई, और वो भी गुरु के प्रति गलती की है, he was inattentive in regards to his spiritual master, तो अब इसकी शक्ति क्षीण हो गए। तो देखिए देवराज इंद्र फिर सारे जो देवता हैं उनकी सत्ता ये दानव राक्षस सब हड़प कर ले गए, क्यों, क्योंकि एक मोमेंट ऑफ inattention, वन मोमेंट ऑफ तंद्रा, ये दूसरा उदाहरण। और महाराज इंद्रद्युम्न का उदाहरण, एक मिनट आपने साइलेंट किया, नहीं आप इनको दीजिए। आपको आता है ना This is called tandra for cell phone. असावधान रहना। तो महाराज इंद्रद्युम्न का उदाहरण है कि वो समाधि में ध्यानस्थ और अगस्त ऋषि गुजर रहे हैं, अगस्त ऋषि गुजर रहे हैं, और अब ये अपने ध्यान में समाधस्थ हैं, और इन्होंने ध्यान में नहीं दिया कि अगस्त ऋषि गुजरे सामने से, अगस्त ऋषि ने देखा कि इन्होंने मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया, श्राप दे दिया कि तुम एक पशु के समान व्यवहार कर रहे हो तो तुम एक पशु बन जाओ, हाथी। तो महाराज इंद्रद्युम्न से अगले जन्म में गजेंद्र बने, और फिर वो गजेंद्र की कथा जो कुछ हुई। तो ये सारे बहुत ही टेरिफाइंग एग्जाम्पल्स हैं कि अ मोमेंट ऑफ इनअटेंशन क्या हो सकता है। इसलिए महाभारत का उदाहरण मुझे अभी ध्यान में आ रहा है कि तंद्रा के वजह से या निद्रा के वजह से कई बार आगे रिजल्ट्स कितने भयावह हो सकते हैं। और ये उदाहरण है अर्जुन जब चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है, चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है, वो किसको सुना रहे थे? सुभद्रा को। और सुभद्रा के गर्भ में कौन? अभिमन्यु। तो सुनते सुनते सुभद्रा तंद्रा में चली गई। अब सुभद्रा को क्या लेना देना चक्रव्यूह से, वो तो एक महिला, वो कोई योद्धा थोड़ी थी। तो अर्जुन सुना रहे हैं, कई बार होता है ना कि हस्बैंड ऑफिस की बातें सुनाता है तो नींद आ जाती वाइफ को। तो यहां अर्जुन अपने ऑफिस की बातें सुना रहे थे कि युद्ध में कैसे चक्रव्यूह की रचना होती है सब। तो वहां तक सुना किसने? सुभद्रा ने। और सुभद्रा के गर्भ में सबसे अटेंटिवली कौन सुन रहे थे? अभिमन्यु। तो मीडियम क्या था अभिमन्यु को सुनने का, कि यहां से जो जा रही थी ध्वनि अंदर। लेकिन जब सुभद्रा तंद्रा में चली गई तो अब यहां पर वो ध्यान नहीं दे रही थी, तो अंदर से ट्रांसमिशन लॉस हो गया, नो नेटवर्क। तो कहां तक नेटवर्क पहुंचा था कि चक्रव्यूह में कैसे भेद कर जाना है, वहां तक अभिमन्यु अंदर सीख लिया। अभी तक पैदा ही नहीं हुए, सीख लिए वो, लेकिन चक्रव्यूह को भेद कर वापस बाहर कैसे आना है, उस समय ट्रांसमिशन लॉस हो गया था, वो नहीं सीख पाया। तो आगे चल के परिणाम क्या हुआ कि अभिमन्यु जब 16 साल के हुए और जब चक्रव्यूह भेद कर वो गए कौरवों का, वहां तक उनको सब याद था, लेकिन उसको भेद कर वापस आना ये उनको याद नहीं था। तो यहां पर ये उदाहरण हम दे रहे हैं कि क्या रिपरकशंस और कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम हो सकते हैं तंद्रा के। तो भगवान ने जो अतंद्रित कहा है किसको? अपने आप को। जातु कर्मण्य तंद्रित, कि मैं जो अतंद्रित हूं, मतलब जो सावधान हो और जो जिम्मेदार हो। तो फिर ये अतंद्रित एक शब्द जो भगवान ने आज इस्तेमाल किया है, इसका पूरा अर्थ क्या है? सावधानी के साथ जिम्मेदारी निभाना। न केवल सावधानी, न केवल जिम्मेदारी, बल्कि सावधानी के साथ जिम्मेदारी निभाना, इसको कहते हैं अतंद्रित। और ये केवल भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। ये जो अतंद्रित होने का जो ख्याति है वो केवल भगवान श्री कृष्ण, बाकी हम लोग सब तंद्रा क्लब के मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, ट्रस्टी भी हैं, लाइफ मेंबर है किसके? तंद्रा क्लब। तो ये है अतंद्रित आज भगवान जिसके विषय में बोल रहे हैं। अब अगला प्रश्न कोई पूछ सकता है कि भाई क्या आपके भगवान श्री कृष्ण वो कंप्लीटली मॉरल हैं? आप बोल रहे हो कि भाई वो अतंद्रित हैं, वो श्रेष्ठ हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो आचार्य हैं, वो अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। तो भाई उनके तो बहुत से किस्से हमने सुने, और ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं कि क्या बताएं। रासलीला, खैर रासलीला तो बहुत एडवांस हो गया। बचपन में चोरी किया करते थे, वो भी माखन की चोरी किया करते थे। तो भाई ऐसे माखन चोर, ऐसे लंपट, लंपट कहते हैं भगवान को, कि ऐसे लंपट, ऐसे इनको हम अतंद्रित आचार्य कैसे माने? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर आपको क्या दिख रहा है। एक मोटर गाड़ी और एक हवाई जहाज, दोनों जा रहे हैं, तो यदि मैं पूछूं कि दोनों के जो ट्रैफिक रूल्स क्या एक हैं या अलग है? अलग है ना। अब जब प्लेन उड़ रहा है और पायलट ने देखा रोड पर रेड रेड सिग्नल है, तो अचानक पायलट ने इंजन विंजन सब बंद कर दिया, तो क्या होगा? तो जो एयर ट्रैफिक रूल्स हैं वो रोड ट्रैफिक रूल से कई बार विपरीत होते हैं। इसलिए भगवान भौतिक संसार में आकर अपने कर्तव्यों को भी निभाते हैं हमारी तरह, परंतु फिर भी भगवान की जो व्हीकल, कौन सी व्हीकल है वो? हवाई जहाज की तरह। तो वो जो रूल्स फॉलो करते हैं वो उस स्तर के रूल्स फॉलो करते हैं, कौन से? जो कि विष्णु तत्व के स्तर के रूल्स हैं, जो कि हमारे स्तर के रूल्स से बहुत ऊपर है। जैसे कि हवाई जहाज बहुत ऊपर उड़ रहा है लेकिन फिर भी रूल्स को फॉलो कर रहा है, उसके लिए भी एयर ट्रैफिक रूल्स है। तो हमको, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ऊपर, हमको लगता है कोई ट्रैफिक नहीं है उसके लिए तो, हाँ उसको तो कोई रेड सिग्नल पर रुकना नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, उड़े जा रहा है। यहां पर हम खड़े एक घंटे से ट्रैफिक में अटके हुए, तो पायलट को पूछो तो उसके भी वो रूल्स फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो कहीं पर भी उड़ सकता है, कहीं पर भी लैंड कर सकता है, जहां पर दिखा, अरे बड़ा खुला मैदान है, चलो इधर ही उतर जाते। तो ये समझना है कि भगवान के स्तर पर भगवान जब किसी नियमों का पालन करते हैं तो हमें भगवान को हमारे लेवल पर लाकर हमारे नियम थोपने नहीं उनके ऊपर। तो यहां पर सबसे पहले इससे ये समझ में आ रहा है। अब दूसरे उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे। समझाएंगे कि भगवान जानबूझकर ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, जैसे कि मक्खन चोरी की लीला या रास लीला, भगवान जानबूझकर ऐसी लीलाएं करते हैं एक अलग सिद्धांत प्रस्थापित करने के लिए। जैसे भगवान ने एक गृहस्थ जीवन के कर्तव्य भी निभाए, जैसे द्वारका में, और भगवान ने रासलीला की, गोपियों के साथ नृत्य किया मध्यरात्रि, और जो भी माखन चोरी लीला इत्यादि जो लोग आलोचना करते हैं, लांछन लगाते हैं, तो क्यों भगवान ये सब करते हैं? जैसे कि यहां पर उदाहरण है कि कोई डिटर्जेंट है। अब ये डिटर्जेंट के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आप लोग वाकिफ हो इन एडवर्टाइजमेंट से, ये सर्फ या रिन इत्यादि, इनके एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाया जाता है कि छोटा बच्चा स्कूल गया है कीचड़ में, पूरा अपने व्हाइट शर्ट पैंट को कीचड़ में लेप लूप के आया है, है ना, और फिर उसकी मां, कोई बात नहीं बेटा यहां दो, सर्फ घिसती है एकदम ऐसा सफेद बाहर निकलता, पहले से भी ज्यादा निकलता बाहर, है ना। तो वो एडवर्टाइजमेंट में वो क्या दिखाना चाह रहे? कभी आपने वो एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं देखा होगा कि एकदम सफेद कपड़ा वो निकाल के मां को दे रहा है, मां इसको और सफेद करो, नहीं, एकदम कीचड़ से लथपथ कपड़ा वो दिया जाता है, और ऐसे ऐसे दाग दिखाए जाते हैं कि आप कभी जिंदगी में आपके शर्ट पे ऐसे दाग आएंगे भी नहीं, और अगर आएंगे तो कभी वो रिन से निकलेंगे नहीं, नया शर्ट ही लेना पड़ेगा, वो लोग नया ही दिखाते हैं। लेकिन क्यों? वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है कि इसकी शक्ति, वो रिन या जो भी वो सर्फ है उसकी जो ग्लोरीज है वो कब ज्यादा उभर कर दिखती है? जितना ज्यादा मैला कपड़ा उसको यदि इसने साफ कर दिया तो इसकी ग्लोरीज उतनी बढ़ती। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण वो ऐसे डिटर्जेंट है कि जितना आप बदतर से बदतर कोई कार्य लो इस संसार का, सबसे नगण्य, सबसे गिरा हुआ घटिया कार्य भी लो, भगवान उसको करते हैं तो भगवान उसको करने के बाद जो अगर उसको सुनता भी है तो उसको शुद्ध कर देते हैं। भगवान तो छोड़ दीजिए। इसलिए रासलीला जो भगवान ने रचाई जानबूझकर कि मैं इतना शुद्ध हूं कि यदि मैं किसी गैर स्त्री के साथ मध्य रात्रि में संग भी करूं, उसको कोई यदि देखे सुने तो वो अपनी काम वासना से मुक्त हो जाता है। तो भगवान इतना एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स प्रस्थापित करने के लिए ऐसे कर्म करते हैं। जैसे एक बंगाली व्यक्ति प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद को यही बोल रहे थे, क्या ये आपका आपके कृष्ण दूसरी स्त्रियों के साथ उन्होंने रासलीला की मिडनाइट, तो अपनी पत्नी के साथ आए थे। तो प्रभुपाद ने कहा, देखिए हम लोग सब जो है ना, हम प्रकृति हैं और हम भगवान के हैं, भगवान हमारे पति हैं। तो ये जो आप अपनी पत्नी के साथ हो ना, आप गैर स्त्री के साथ कर रहे हो संग। वो एकदम शॉक हो गया, ये भगवान श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी है एंड यू आर बीइंग इमोरल, दिस इज कृष्णास प्रॉपर्टी। और वो वास्तविकता है कि हर कोई जीव, जीव तो छोड़ दीजिए, हर एक कण परमाणु भगवान की प्रॉपर्टी। तो हम फिर से इस एग्जाम्पल पे आते हैं कि भगवान जानबूझकर इस संसार में ऐसे लीलाएं इसलिए करते हैं ये बताने के लिए। अब इसमें देखिए, भगवान कई बार लोग भगवान का अनुकरण करना शुरू करते हैं कि ठीक है, यदि भगवान ने भगवत गीता सुनाई तो मैं भी रथ पे खड़ा होकर कुछ ट्राई करता हूं, या मैं भी गोवर्धन उठाने को ट्राई करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। तो होता क्या है कि भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं कर दोनों बैलेंस करते हैं। आई एम परफॉर्मिंग ह्यूमन लाइक पास्ट टाइम, सो डोंट थिंक आई एम अ ह्यूमन बींग, एंड बिकॉज आई एम गॉड डोंट थिंक आई कैन नॉट कम डाउन टू योर लेवल टू परफॉर्म ह्यूमन लाइक पास्ट टाइम, देयरफॉर इज अनलिमिटेड। कंफ्यूजिंग ना यार? कृष्णा कैन परफॉर्म ह्यूमन लाइक पास्ट टाइम्स एंड येट बी अनअफेक्टेड, एंड वी ट्राई टू परफॉर्म गॉड लाइक सो कॉल्ड पास्ट टाइम्स एंड वी आर टोटली अफेक्टेड। तो भगवान को हम चीपली न लें, इसलिए भगवान आकर, जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण देते अग्नि का, भगवान कृष्ण अग्नि के समान। अग्नि के अंदर आप कितना भी कुछ कचरा डालो, और सूर्य का एग्जाम्पल देते कि सूर्य पूरे पृथ्वी पर मलमूत्र पड़ा हुआ है, सूर्य मलमूत्र को शुद्ध कर देता है लेकिन सूर्य प्रदूषित नहीं होता। वैसे ही भगवान चाहे कितने भी ऐसे तथा कथित कुछ कार्य करें जो हमारे नैतिक दृष्टिकोण से वो बिल्कुल भी स्वीकार्य न हो, लेकिन भगवान करते हैं तो भगवान शुद्ध रहते हैं और जो उसको सुनता है, श्रवण करता है, वो शुद्ध हो जाता है। तो उदाहरण क्या है? डिटर्जेंट का, कि डिटर्जेंट का ये उदाहरण। देयरफॉर कृष्णा इज दैट सुप्रीम डिटर्जेंट, दैट फॉरगेट अबाउट एनीथिंग फिल्दी ही कैन क्लीन एंड येट रिमेन सुप्रीमली क्लीन। इसलिए तो अब हम भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अतंद्रित हैं इसके कुछ उदाहरण लेंगे। सबसे पहला उदाहरण, जब भगवान जन्मे कंस के कारागृह में वसुदेव और देवकी के पुत्र बनकर। तो यहां पर एक एक उदाहरण में भगवान कितनी सावधानी बरते हैं ये हम देखेंगे। ध्यान में रखना, अतंद्रित का अर्थ क्या है? सावधानी के द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाना। तो भगवान अब जन्मे हैं जन्मते ही वो चतुर्भुज रूप में जन्मे। क्यों चतुर्भुज रूप में जन्मे? और वही भगवान जब नंद महाराज और यशोदा इनके सूतिका ग्रह में जन्मे तो दो भुज रूप में जन्मे, क्योंकि वसुदेव और देवकी इस डर में थे कि कंस को पता लग जाएगा तो कंस आकर मार डालेगा, जैसे कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया था देवकी। तो क्योंकि वसुदेव और देवकी डरे हुए थे तो उनका डर दूर करने के लिए भगवान पैदा हुए चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म के साथ। तो भगवान देखिए कितने सावधानी से अपने जन्म की लीला से प्रारंभ कर रहे हैं कि वो कितने सावधान हैं अपना मिशन एस्टैब्लिश करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। तो चतुर्भुज रूप में इसलिए जन्मे। तो देवकी ने जब देखा कि अरे तो शंख चक्र गदा सब एम्युनिशन आर्मरी सब लेकर आए, तो वसुदेव और देवकी को लगा कि हाँ हमको डरने की जरूरत नहीं। तो भगवान ने जन्म से ही दिखा दिया कि डरने की जरूरत नहीं। फिर जैसे ही वसुदेव इन्होंने छोटे से नन्हे से अभी भगवान को अपने हाथ में लिया, भगवान ने आदेश दिया कि मुझे तुरंत गोकुल ट्रांसफर करो, यहां से पैदा होते ही अपने पेरेंट्स को आदेश दे रहे ट्रांसफर करो मुझे। तो वसुदेव जैसे ही लिए भगवान को अपने गोद में, वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गई। इतनी सख्त बेड़ियां कंस ने बांध रखी थी वसुदेव और देवकी को, तो खाली वसुदेव ने हाथ में लिया भगवान के और वसुदेव की सारी बेड़ियां खुल गई अपने आप। तो अब यहां पर देखिए भगवान इतने से अपने पिता के गोद में अभी अभी पैदा हुए, लेकिन भगवान कितने अतंद्रित सावधान हैं कि मेरे पिताजी की बेड़ियां पहले मैं खोलूंगा ताकि ये मुझे यहां से बाहर ले जा सके। और फिर जैसे ही वसुदेव जी भगवान को लेकर, अब वसुदेव जी ने देखो जब भगवान ने ये कहा कि मुझे ट्रांसफर करो कहां से, इस कारागृह से गोकुल, तो वसुदेव जी ने डाउट नहीं किया ट्रांसफर, इधर तो बेड़ियां बंधी हुई है, इधर बड़े बड़े ताले हैं और यहां कंस बाहर खड़ा है, द्वारपालों को रख रखा है उसने, और बोल रहे हो कि गोकुल ट्रांसफर, भाई ये ऐसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है, कोई ब्लूटूथ है क्या, ब्लूटूथ ट्रांसफर है क्या, ऐसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है। उन्होंने कोई इसमें संशय या डाउट नहीं किया। तो इसमें हमारे आचार्य बताते हैं क्योंकि वसुदेव जी ने भगवान को अपने हाथ में लिया, इसलिए भगवान को जो अपने हाथ में ले लेता है तो उसके ये बेड़ियां तो छोड़ो, उसके भव बंधन छूट जाते हैं। और वसुदेव जी जैसे ही कारागृह का इतना विशाल द्वार था उसके पास गए, अपने आप द्वार खुल गया। और द्वार खुलने से पहले जो द्वारपाल बाहर बैठा था संतरी, उसको पहले सुलाया भगवान ने। तो ध्यान में रखे भगवान कितने डिटेल्स पे ध्यान दे रहे हैं कि वो संतरी को सुलाया पहले, उसको तंद्रा में नहीं निद्रा में डाला। और टाइम ध्यान में रखना, मिडनाइट, भगवान जानबूझ के मिडनाइट के समय पैदा हुए कि कोई शक भी नहीं करे कि उस समय द्वारपाल सोया क्यों था, क्योंकि जनरली जितने भी सिक्योरिटी होते हैं रात के 12 बजे कहीं भी हो सोते हैं वो। तो पहले संतरी को सुलाया, वसुदेव जी जैसे द्वार के निकट गए कारागृह का द्वार अपने आप खुला। अभी भी मैं राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुन रहा था, इसी के कनेक्शन एक लेक्चर में राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि वो अमेरिका गए हमारे इस्कॉन के एक सेंटर में प्रीचिंग भागवत कथा करने के लिए। तो एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे दरवाजे थे, ऑटोमेटिक डोर्स होते ना एयरपोर्ट के, आप जाओ खुल जाते, ऐसा नहीं कि वो बटन वटन दबाना पड़ता है, अपने आप वो देख लेता आ रहा आ रहा खोलो, फिर आप जाओ अपने आप बंद कर देते। तो राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि वो जा रहे थे, उनके सामने एक बंदा, वो सेंसर्स होते हैं डोर के आगे, तो गया डोर के आगे, वो सेंसर्स ने सेंस किया कि कोई आ रहा है, तो दरवाजा खुला, वो गया। फिर वो सेंसर का एंगल ऐसा था कि उसके पीछे कुत्ता था वो आदमी का, तो बंद हो गया दरवाजा, कुत्ता नहीं आ पाया। तो फिर वो कुत्ता इधर उधर थोड़ा हिला तो वो सेंसर के सामने आ गया, तो वापस दरवाजा खुल गया और कुत्ता भी गया। तो राधा गोविंद महाराज का रियलाइजेशन ये था कि अरे लोग शक करते हैं कि हमारे भगवान जब जन्मे तो कंस के कारागृह के दरवाजे ऑटोमेटिकली कैसे खुल गए। यहां पे देखो, अ डॉग इज गोइंग एंड द डोर्स आर ओपनिंग, व्हाट टू स्पीक ऑफ गॉड। तो अपने आप सारे द्वार खुलने लगे एक एक कर कर। और भगवान ने ऐसी योजना की थी, योग माया को कहा था कि पूरे मथुरा में कोई भी जगह हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी जगह हुआ नहीं होना चाहिए। सभी, यहां तक कि कुत्ते भी सोए हुए थे। कुत्ते जनरली रात को सोते नहीं है और सोने भी नहीं देते, स्पेशली इधर वृंदावन कॉलोनी के। तो योग माया के द्वारा भगवान ने कुत्तों को भी सुला दिया। जितने मथुरा वासी सभी गाढ़ निद्रा में, ऐसा नहीं कि कोई लाइट स्लीपर कोई बन गया था, नहीं, एकदम डीप स्लीपर, सबको गाढ़ निद्रा में सुला दिया। तो ये सब भगवान की सावधानी। एक एक द्वार खुलने लगे, और खाली कंस के कारागृह के का एक द्वार नहीं था, ऐसे कई द्वार थे। और जैसे वसुदेव एक एक द्वार के सामने आते तो एक एक श्रृंखला से, क्रम से एक एक द्वार खुलने लगा। और फिर जो बड़े बड़े मथुरा के गेट्स वो खुले, फिर जमुना ने रास्ता दिया, और इस प्रकार से भगवान को लेकर गए वसुदेव। तो यहां पर पैदा होते ही भगवान ने कितनी सावधानी बरती, किस लिए, ताकि वसुदेव के ऊपर कोई आंच ना आए। यहां पर समझ में आ रहा है कि भगवान क्यों सर्वश्रेष्ठ है, कि पैदा होते ही भगवान ने जो अतंद्रित ये गुण दिखाया, इतने सावधान भगवान थे। पूतनावध, अब देखिए पूतनावध में भगवान ने अपनी आंखें बंद की, निमीलित क्षणा, पूतना प्रवेश कर रही है नंद भवन और अंतपुर में, जहां पर भगवान लेटे हुए हैं। 6 दिन के हैं भगवान, ध्यान में रखिएगा, भगवान अब 6 दिन के हैं। पूतना ने प्रवेश किया और भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो हमको लग रहा होगा भगवान भी तंद्रा में गए क्या, नहीं, भगवान आंखें बंद करते हैं तो भी अतंद्रित रहते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 2 नाम बताए गए हैं, निमिष अनिमिष, निमिष अनिमिष स्वाघ्री, कि भगवान जब, निमिष का अर्थ होता है जब हमारी आंखें पलके बंद होती है, अनिमिष का होता है जब पलके खुली रहती है। तो भगवान के 2 नाम हैं कि भगवान जब अपने भक्तों को देखते हैं कि वो किसी गलत कार्य में लगे हुए हैं तो भगवान आंखें बंद कर लेते हैं, और जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त मेरी सेवा कर रहा है तो अनिमिष बन जाते हैं, बिना पलक झपके भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो पूतना मारनी आई थी तो भगवान देखना नहीं चाहते थे कि अरे क्या इतने कुत्सित हृदय से मुझे मारने आई है। तो भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, और आंखें बंद कर भगवान ध्यान कर रहे थे कि अगर इसने कोई पिछले जन्म में कोई एक पुण्य कार्य किया हो तो मुझे कोई रीजन तो मिले इसका उद्धार करने के लिए। तो भगवान आंखें बंद कर पीछे जा रहे थे, रिवाइंड कर रहे थे, पूतना के सारे लाइव्स को रिवाइंड कर देख रहे थे कोई पुण्य कार्य इसने किया है। और भगवान की सावधानी पूतना उद्धार में ये देखी गई कि जब पूतना अपना बड़ा विकराल रूप उसने धारण कर लिया, भगवान ने अब उसके उसका दूध चूस लिया, अब उसके प्राण विष चूस, सब कुछ चूस लिया, तो पूतना अब मरने की हालत में भगवान को नंद भवन से बाहर, इसलिए देखिए पूतना उद्धार में वर्णन है कि भगवान पहले पूतना को प्रेरित करकर नंद भवन के बाहर लेकर गए, क्योंकि अगर इतना विकराल रूप पूतना नंद भवन के अंदर ले लेती तो पूरा नंद भवन टूट जाता। तो भगवान ने, अरे मेरे पिताजी का प्रॉपर्टी है इधर, मेरे को इतनी सारी लीलाएं अभी आगे करनी, 6 दिन का ही हुआ हूं मैं। तो ऐसे समय पर पूतना के प्राण हरे भगवान ने कि पूतना बाहर जा चुकी थी तब तक, और भगवान इतने सावधान थे 6 दिन के कि पूतना अब गिरकर मरकर गिरने वाली थी, तो भगवान ने डायरेक्शन दिया कहां गिरो। तो एकदम वृंदावन मथुरा बॉर्डर पर लेकर गए, कहां लेकर गए, वृंदावन मथुरा बॉर्डर पर लेकर गए। और मथुरा क्या, कंस का राज्य था, तो मथुरा बॉर्डर पर कंस का बड़ा उद्यान था, बागीचा था। तो भगवान चाहते थे कि वृंदावन में कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए पूतना, तो उसको बॉर्डर पर लेकर गए और बोले कंस के बागीचे में गिरो तुम। तो जितना वो गिरते गिरते कंस का पूरा उद्यान सब कुछ खत्म उसने किया। तो पूतना उद्धार में देखिए भगवान कितने सावधान थे कि ब्रजवासियों को बचाए, नंद भवन को बचाए, पूतना को भी बचाए, और कंस को एक इंडिकेशन दे कि भैया वापस तू भेजेगा तो तेरा ही इसमें नुकसान है, शुरुआत तेरे बागीचे से हुई है। फिर कर्ण और अर्जुन का युद्ध, जो सबसे प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध हुआ, 1-to-1 कॉम्बैट कर्ण अर्जुन। तो भगवान कितने सावधान, देखिए इसके अंदर समझ में आता है कि भगवान कितने सावधान थे। भगवान जानते थे कि कर्ण के तुणीर में एक ऐसा बाण है जिसका विरोध अर्जुन नहीं कर पाएगा, और वो बाण था सर्प अस्त्र। और वो कर्ण रखा था कि ऐसे टाइम पर जब अर्जुन थोड़ा सा इनअटेंटिव रहे, और कर्ण उस समय वो अर्जुन के माथे पर छोड़ने वाला था, कर्ण अर्जुन के माथे पर छोड़ने वाला था। और भगवान जानते थे कि कर्ण ये करने वाला है, तो भगवान उस मोमेंट का वेट कर रहे थे कि कब वो उस तुणीर से वो बाण निकाले, और वो जब रिलीज करे तो उसके बीच में भगवान अर्जुन को कैसे बचाएंगे। सुनिए, कर्ण ने वो बाण निकाला सर्प शस्त्र, वो बाण छोड़ा कर्ण ने, और अब जिसको बोलेंगे ना मिड एयर में, और वो कैसा था, वो एकदम कर्ण का जो एम है, एम जिसको बोलते हैं कि वो चूकने वाला नहीं था, तो उसने एम कहां किया था, माथे यहां पर। तो भगवान ने किया क्या कि वो मिड एयर में आ रहा है, अर्जुन को यहां लगने वाला अभी वो बाण, और यहां लगने की वजह से अर्जुन का पूरा ये सर फट जाता था। तो भगवान ने अपने पैरों के अंगूठे से रथ को दबाया, तो जितने घोड़े और पूरा रथ वो आधे इंच धस गया, धरती में धस गया, तो अर्जुन वो भी नीचे हो गए। तो वो बाण अर्जुन के मुकुट को रखे गया और मुकुट पूरा जलते हुए नीचे गिरा। बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। तो यहां पर समझ में आ रहा है भगवान अतंद्रित कितने सावधान, कि भगवान ने एग्जैक्ट वो जो मोमेंट कि कब वो रिलीज करेंगे उस शस्त्र को, और वो मिड एयर में कितने स्पीड से आ रहा है सब कैलकुलेट कर लिया भगवान ने, कितने स्पीड से आ रहा है, अर्जुन और कर्ण के बीच में डिस्टेंस कितना है, अच्छा मैथ्स जानते थे भगवान कि डिस्टेंस कितना है, कितने स्पीड से आ रहा है, और कौन से समय मुझे अंगूठे से रथ को नीचे धरती में धसाना है, ताकि वो, और ऐसा नहीं भगवान चाहते थे कि वो रिलीज करे, क्योंकि एक ही बार चला सकता था कर्ण, अब वो फेल हो गया, एक बार खाली मुकुट को जला के चला गया, अब कर्ण के पास कुछ नहीं था। तो जब अर्जुन ने भगवान के इस अतंद्रित गुण को देखा, तो अर्जुन की आंखों से आंसू आ गए, अर्जुन समझ गया है कि ये भगवान, क्योंकि अचानक रथ आधे इंच नीचे जा रहा है और वो भी ये अंगूठा दबा के कर रहे हैं, तो भगवान के पास इतना टाइम नहीं था कि अर्जुन को बताए कि अर्जुन तुम ऐसे करो वो करो ये करो। भगवान ने, मैं तुमको बताता हूं, मैं करता हूं। तो ये कर्ण अर्जुन के युद्ध में भगवान कितने सावधानी से अर्जुन की रक्षा कर रहे दिखाई देता है, अतंद्रित गुण उनका। दुर्योधन और गांधारी, ये भी कथा हम जानते हैं कि गांधारी ने, अब दुर्योधन का एक ही लक्ष्य था, भीम को खत्म करना, उसको बाकी किसी से मतलब नहीं था, भीम को खत्म करना। तो अब गांधारी ने दुर्योधन को कहा कि मैं तुम्हारा शरीर वज्र की तरह कर सकती हूं, लेकिन उसके लिए मेरी पट्टी मुझे खोलनी होगी जो मैंने जिंदगी भर बांध रखी है, और मेरे सतीत्व के वजह से, मेरे अंदर जो शक्ति आए उसके वजह से मैं तुम्हारे शरीर को वज्र के समान बना सकती हूं, लेकिन मुझे पट्टी खोलनी होगी और तुम्हें निर्वस्त्र आना होगा। अब दुर्योधन तो वैसे ही बेशरम था, उसको तो कोई शर्म लिहाज था नहीं कुछ, तो उसने कहा जो भी, अगर भीम को मारना है यही तरीका है तो ठीक, यही सही। तो अब सोचिए कि गांधारी कहां, वो लेडीज क्वार्टर्स में रहती होगी और दुर्योधन निर्वस्त्र घूम रहा है बीच में जा रहा है। तो भगवान का टाइमिंग देखिए, सावधानी, रात के समय भगवान पहुंच गए और दुर्योधन को बीच में पकड़ लिया और बोले शेम शेम पप्पी शेम। मतलब ये नहीं बोले होंगे, संस्कृत में बोले होंगे कि दुर्योधन शर्म नहीं आती, इतना बड़ा तू लैंगदा हो गया और बिना कपड़े घूम रहा है यहां। तो दुर्योधन भी, उसको भी लगा कि हाँ भाई ये तो सही बात नहीं है मेरे को। तो भगवान ने कहा कि कम से कम एक गमछा तो पहन के जा, ऐसे तू पागल है ऐसे घूम रहा है नंगा। तो हम जानते हैं कि उसने फिर वो एक वस्त्र अपने जंघा पर पहनकर जब वो गया, तो गांधारी ने जब अपनी पट्टी खोली और तुरंत वो ट्रांसमिशन हुआ और गांधारी ने कहा, अरे, जैसे ही गांधारी ने देखा कि दुर्योधन वो अपने कमर पर एक कोई कपड़ा बांध कर आया, तो तुरंत गांधारी समझ गए ये कृष्ण का ही काम है, ये कृष्ण का ही काम है। क्योंकि अतंद्रित, क्योंकि सबसे सावधान पूरे महाभारत युद्ध में कौन थे, भगवान कृष्ण। फिर अजामिल एवं गजेंद्र का उद्धार, इसमें भी भगवान की टाइमिंग देखिए कि यमदूत आ गए, अजामिल की कथा हम सब सुने, यमदूत आ गए ले जाने के लिए और यमदूत को देखते ही अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा कि मुझे बचाओ, और पुत्र का नाम नारायण। तो सोचिए कितना टाइम कम था, यमदूत पहुंच चुके हैं, यमपाश निकाल चुके हैं और यमदूत को देखने के बाद नारायण बोलता है, तुरंत विष्णुदूत पहुंचते हैं और रोक लेते हैं। तो ये विष्णु दूतों को भेजा किसने, स्वयं भगवान ने भेजा। और गजेंद्र का भी उद्धार, उसमें भी टाइमिंग देखिए कि जैसे ही गजेंद्र ने वो कमल का पुष्प अर्पित किया और भगवान को प्रार्थना करते हुए भगवान को पुकारा, तुरंत भगवान वहां पर प्रकट हुए और उस मगरमच्छ को मारा। और अगर हम देखें भगवान की भौतिक प्रकृति जिसको भगवान ने कितने सावधानी से बनाया है, बहुत सावधानी से इस प्रकृति को भगवान ने रचा है कि इस प्रकृति में, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं सूर्य का, कि सूर्य अपनी ऑर्बिट से यदि एक इंच भी अंदर आ जाए तो ये पूरा विश्व जल के भस्म हो जाएगा, और अगर सूर्य अपनी ऑर्बिट से एक इंच दूर चला जाए तो हम लोग सब बर्फ के कारण मर जाएंगे, विल फ्रीज टू डेथ। तो देखिए भगवान ने कितनी सावधानी से सूर्य को ऐसे जगह पर रखा है, ऐसे ऑर्बिट पे कितने सालों से, कभी वहां पर ये नहीं कि सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स इतने सारे घूम रहे हैं, तो उन्होंने अपने लेन चेंज कर दिया गलती से कि भाई बहुत हो गया है, पिछले करोड़ों सालों से मैं इसी लेन में घूम रहा हूं। तो जुपिटर ने अपना लेन चेंज कर दिया, सूर्य ने चेंज कर दिया थोड़ा चेंज के लिए, जैसे ड्राइवर्स होते हैं ना लेन चेंज कर। कभी नहीं सुना कि वो घूमते घूमते एक्सीडेंट हो गया, सैटर्न में जुपिटर में टकरा गए, हेड ऑन कोलिजन। नहीं, प्रिसीजन, भगवान की प्रकृति के अंदर भगवान ने सावधानी से क्या हर एक तत्व को बनाया। और एक और प्रिसीजन इस प्रकृति में भगवान का क्या दिखता है कि भगवान ने इस प्रकृति को इतना कंफर्टेबल बनाया है कि हम भक्ति कर सकें, और इतना भी कंफर्टेबल नहीं बनाया है कि हम सेटल हो जाएं, है ना। जैसे गीतामृत का कार्यक्रम कि कंफर्टेबली हम लोग सुन सकें, लेकिन पलंग नहीं दिए आप लोगों कि बोरिया बिस्तर आकर लेकर सो जाओ आप लोग। सो दिस मटीरियल वर्ल्ड इज मेड इन सच अ वे दैट देयर इज इनफ कंफर्ट so that we can practice Krishna consciousness, and there is enough discomfort so that we don't settle. That is again a precision of Krishna in making of this world. So, bhautik prakriti ki rachna mein Bhagwan atandrita kaise hain, ye samajh mein aa raha hai. Aap log hain mere saath, samajh mein aa raha hai? Tandra vandra mein to nahi aa raha hai. Ab Govardhan Leela, गोवर्धन लीला में भगवान की सावधानी बहुत जरूरी है इसमें ये समझना, क्योंकि भगवान 7 दिन 7 रात इतने विशाल पर्वत को अपने बाएं हाथ की ये छोटी सी उंगली पर उठाए रखे, तो अगर भगवान अतंद्रित नहीं होते तो उसको कैसे बैलेंस करते भगवान, कितना भगवान को अतंद्रित वहां पर होना पड़ा कि उसको बैलेंस कर कर रखे 7 दिन 7 रात। कोई वहां पर बीम्स वगैरह नहीं लगाए थे मथुरा से लाल आके कि अभी 7 दिन 7 रात भगवान कैसे उठा के रखेंगे, अकेले भगवान ने उठा कर रखा था। तो भगवान ने यहां पर अपनी सावधानी के द्वारा, क्योंकि ये सारे ब्रजवासी नीचे खड़े हैं, ये सारे ब्रजवासी नीचे खड़े हैं, और इन सब के साथ साथ भगवान ने 7 दिन 7 रात लीलाएं भी की और उसके साथ साथ उसको भी पकड़ कर रखा। तो इतना जो भगवान, हालांकि ओरिजिनल मल्टीटास्कर भगवान ही हैं, तो भगवान ये दिखाए कि मैं अपने भक्तों के लिए उनकी सावधानी और उनके साथ रस का आदान प्रदान करने के लिए कितना अतंद्रित रहता हूं, सावधान कैसे रहते हैं भगवान। और फिर आज के श्लोक में भगवान ने कहा अनुवर्तन्ते, तो अनुवर्तन्ते के 3 अर्थ हैं, अनुगमन करना, समर्थन करना और प्रसन्न होना। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे पद चिन्हों पर मनुष्य सर्वशः, हे पार्थ, ये संपूर्ण जो मनुष्य जाति है वो मेरे पद चिन्हों पर चले, उसको कहते हैं अनुवर्तन्ते। तो अनुवर्तन्ते कि ये 3 अर्थ से समझ में आता है कि हमें भगवान के पद चिन्हों पर चलना है, अनुगमन करना है, और कैसे अनुगमन करना है, मन मार के नहीं कि अरे करना पड़ रहा है, अभी भगवान ने एक ही मार्ग दिया, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं दिया, चलो अभी नहीं, समर्थन करते हुए, केवल फिजिकली नहीं चलना है, आंतरिक रूप से समर्थन करते हुए, और केवल समर्थन से काम नहीं चलेगा, प्रसन्न चित्त अवस्था में भगवान के दिए हुए मार्ग पर चलना। तो भगवान ने कहीं पे, जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, he has left no stones unturned, अनुवर्तन्ते के ये 3 अर्थ भगवान बता रहे हैं। और फिर फाइनली मनुष्य पार्थ सर्वशः, कि हे पार्थ, फिर से पार्थ क्यों पुकार रहे हैं अर्जुन को आज के श्लोक में, कि तुम प्रथा के पुत्र, कुंती के पुत्र हो, और कुंती ने मेरे मार्ग का अनुगमन किया, तो तुम्हें भी तुम्हारे माता के पद चिन्हों पर चलते हुए मेरे मार्ग का अनुगमन करना है। और सर्वशः का अर्थ है, भगवान बोल रहे हैं पूर्ण रूपेण। क्यों पूर्ण रूपेण सर्वशः क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि भगवान जानते थे कि कलयुग में ऐसे लोग आएंगे जो लोग कहेंगे कि हम अध्यात्म का पालन करेंगे लेकिन हमारे अनुसार इतना ही थोड़ा जो मेरे को सूट करता है। कलयुग में लोग क्या बोलते हैं, जो मुझे सूट करेगा मैं उसका पालन करूंगा। भगवान कहते हैं नहीं, पूर्ण रूपेण करना है सर्वशः। और जब पूर्ण रूपेण तुम करोगे तब जाकर तुम एक उदाहरण बनोगे पूर्ण रूपेण दूसरों के लिए। तो इसलिए आज का श्लोक, भगवान आज के श्लोक के द्वारा भगवान कह रहे हैं आई वॉन्ट टू नॉट जस्ट अर्जुन मेक यू इंटू अ वॉरियर, अ क्वालिफाइड वॉरियर, बट आई वॉन्ट टू मेक यू इंटू अ लीडर। एंड थ्रू अर्जुन कृष्णा वॉन्ट्स टू मेक अस ऑल्सो लीडर्स टू इंस्ट्रक्ट एंड गाइड द जनरल पॉपुलेस। तो ये जो श्लोक की श्रृंखला चल रही है इसके संदर्भ में मैं एक अपने हिस्टोरिकल एग्जाम्पल आज मैं देना चाहूंगा, जिनके विषय में मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था और जो उस समय मैंने पढ़ा था इनके विषय में काफी मुझे ऐसे लीडर से प्रेरणा मिली। ये कहा गया है कि भारत के ये एक ऐसे नेता हुए न भूतो न भविष्यति जिनको बोल सकते हैं। He was one leader of our country who was most exemplary. आज का श्लोक क्या है, भगवान बोल रहे हैं I teach by my example. और ये नेता हुए लाल बहादुर शास्त्री जी। अब इनकी जीवनी मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, कुछ कुछ इसमें से मुझे याद है, कुछ इनके व्यक्तिगत उदाहरण। ये हमारे भारत के तीसरे प्रधानमंत्री हुए हमारे आजादी के बाद, मेरे ख्याल से पहले तो हमारे जवाहरलाल नेहरू, फिर गुलजारी लाल नंदा जो दूसरे हुए कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बने आजादी के बाद। और इन्होंने जो भारत को एक नया रूप दिया वो किसी नेता ने उस समय वो नहीं दे पाए जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। कि आप देखिए 1965 में, यदि आपको याद है थोड़ा इतिहास पता है, तो 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर। सबसे पहला आक्रमण पाकिस्तान का था 1948 में, और उसके पश्चात पाकिस्तान, उस समय भी खदेड़ के भगा दिया था पाकिस्तान को हमने। उसके बाद पाकिस्तान को लगा क्योंकि अब अलग हो गया है जिन्ना नेहरू ये सब के वजह से, तो पाकिस्तान को लगा 1965 में कि अब भारत जो है वो इतना शक्तिशाली नहीं है जितना 1948 में था। और उनको लगा कि ये जो प्रधानमंत्री है ये तो क्या पंडित जी हैं, शास्त्री जी हैं, इनको तो कुछ पता नहीं ज्यादा, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। तो फिर से 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया और उस समय जवाहरलाल, अपने लाल बहादुर शास्त्री, इनका जो नारा था कौन सा, जय जवान जय किसान। तो इनका ये जो नारा था ये इनकी नीति थी कि यदि भारत पूरे विश्व में विख्यात होगा तो ये दो कारणों के वजह से, कि यहां की ख्याति होगी किसानों की ख्याति और जवानों की ख्याति। तो शास्त्री जी इन्होंने इस प्रकार से जो नेतृत्व किया हमारी भारत की सेना का और किसानों का उस नारे के द्वारा, तो हमारी भारतीय सेना, थल सेना, नौसेना, वायु सेना, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान ने जो आक्रमण किया था 1965 में उनको खदेड़ कर लाहौर तक पहुंचा दिया और हम लाहौर तक जीत चुके थे, हम लाहौर तक जीत चुके थे। और लाहौर के आगे हम लोग कराची, इस्लामाबाद, वो सब अब हासिल करना करने के पथ पर थे, और उस समय पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था अयूब खान, वो डर गया, वो इसे सहन नहीं कर पाया और उसने तुरंत अमेरिका की मदद ली कि भाई आप इनको रोको, नहीं तो ये तो पूरा पाकिस्तान ले जाएंगे। तो अमेरिका ने इंटरवीन किया और अमेरिका ने लाल बहादुर शास्त्री को एक धमकी दी, और क्या धमकी दी कि यदि तुम युद्ध नहीं रोकोगे, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हमने युद्ध प्रारंभ नहीं किया था, उन्होंने प्रारंभ किया था, वो आक्रमण किए थे, हम तो खाली प्रतिकार कर रहे हैं। तो अमेरिका ने धमकी दी थी लाल बहादुर शास्त्री को कि यदि तुम युद्ध नहीं रोकोगे, यदि तुम फिर से नहीं लौटाओगे किसे लाहौर को ये सब को, तो हम हमारे देश से जो हम अनाज देते हैं भारत को, और विशेष रूप से गेहूं, क्योंकि गेहूं की कमी थी उस समय भारत में, तो गेहूं अमेरिका से, और वो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने पैक्ट बनाया था अमेरिका से, क्योंकि उनको सब कुछ विदेशी चाहिए था, तो अमेरिका से बहुत ही रद्दी किस्म का गेहूं आता था, लाल लाल गेहूं, पीएल 480 जिसको बोलते थे, जो वहां का पब्लिक लॉ 480 का जो गेहूं एकदम लाल, जो कि वहां पे वो घोड़ों को देते थे खाने के लिए, कहां अमेरिका में जो घोड़ों को देते थे वो भारतीय नागरिकों के लिए वहां से अमेरिका से आता था, और उसका हम पैसा भरते थे। तो उन्होंने धमकी दी कि हम बंद कर देंगे, शास्त्री जी ने कहा कि बंद कर दो, वो कहेंगे कि अगर हम बंद कर देंगे तो तुम्हारे जो भारतीय नागरिक है वो भूखे मरेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश में अनाउंस किया कि हम ये अमेरिका द्वारा दिया गया घटिया जो गेहूं है लाल वाला, ये हम बंद कर रहे हैं, और मैं और हम सब मिलकर हम हमारा खाना कम करेंगे। और क्योंकि उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, वो ऐसे नेता रहे अपने उदाहरण से, तो करोड़ों की संख्या में पूरे हफ्ते में हर सोमवार का उपवास रखने लगे सारे भारतीय, सोमवार का उपवास रखने लगे। और क्योंकि युद्ध चल रहा था तो युद्ध का खर्चा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम अपना फालतू खर्चा कम करेंगे ताकि हम वो पैसा सैनिकों की सहायता के लिए इस्तेमाल कर सकें। और आप जानते हैं कि सबसे पहले खर्चा कम करने की शुरुआत उन्होंने अपने आप से की। कैसे शुरुआत की? उनके घर में काम करने वाली बाई आती थी बर्तन मांजने वाली, उन्होंने उससे कहा कि नहीं, कल से तुमको आने की जरूरत नहीं है। झाड़ू लगाने वाली बाई आती थी, उसको मना कर दिया। और उनकी जो पत्नी ललिता शास्त्री, उनकी पत्नी उस समय बीमार थी, तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री घर के बर्तन मांजते थे, घर पे झाड़ू लगाते थे खुद हाथों से, और वो जो पैसा वो काम वाली बाई को देते थे वो पैसा फिर युद्ध में लगाया उन्होंने। और उनके पास पहनने के लिए दो जोड़ी धोती और दो कुर्ते, बस इतने ही था। तो उनकी वो इतना अभी घर में काम कर रहे हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री उसकी सेवा कर रहे हैं, तो उनकी धोती फट गई, तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपके लिए एक नई धोती, नहीं इसको ही सिल दो। और उन्होंने जो प्रधानमंत्री की तनख्वाह होती है वो लेना बंद कर दिया, वो पैसा लेना बंद कर दिया, और वो अपने पूरे परिवार का घर खर्च केवल 275 रुपए में चलाते थे। एक इंग्लिश का टीचर आता था उनके बेटे को इंग्लिश सिखाने के लिए, उसको बोल दिया कि आपको आने की जरूरत नहीं, उसने कहा आपका बेटा इंग्लिश में फेल हो जाएगा, वो बोला कि अच्छा है फेल हो इंग्लिश में, कोई जरूरत नहीं इसको अंग्रेजी सीखने की। तो मैं बता रहा हूं कि उन्होंने क्या क्या अपने उदाहरण से एक प्रधानमंत्री, और आज के एक थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि अपना घर का खर्च कम कर वो पूरे देश को स्वयं बर्तन मांजकर झाड़ू लगाकर ये सब कुछ कर रहे थे। और दुर्भाग्यवश ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको जहर देकर मार डाला गया। हम जानते हैं ताशकंद वो समझौते के लिए गए थे, तो उनका निजी जो कुक रामनाथ वो हर समय उनके साथ रहता, तो उस रामनाथ का अपहरण किया गया उस रात, मेरे ख्याल से 11 जनवरी 1966 उसका अपहरण किया गया। और हाँ, वो दिन में एक बार खाना शुरू कर दिए थे ताकि खर्चा कम लगे उनके स्वयं के ऊपर, दिन में एक बार खाते थे, रात को केवल दूध पीते थे, तो उनके दूध में जहर डालकर, क्योंकि उनका जब शरीर वापस भारत आया तो उनके डॉक्टर को अनुमति नहीं थी वहां पर देखने की, ना तो पोस्टमार्टम हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जब उनकी पत्नी ललिता, उन्होंने उनके पति का जो शव देखा तो पूरा नीला हो चुका था, और देश भर को बताया गया कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि जो भी पॉइजनिंग के वजह से जो शरीर कैसा नीला हो जाता है। तो ये हमारे देश के केवल 18 महीने वो सत्ता में रहे, 18वें महीने में इस प्रकार से जहर डालकर उनको मार दिया गया। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने उदाहरण से सिखाया कि क्या हमारा देश होना चाहिए, कि उनकी नीतियां क्या थी कि हमारे देश में सब कुछ स्वदेशी हो, स्वदेशी संसाधन हो, स्वदेशी तकनीक हो, और हम उस स्वदेशी आंदोलन के बलबूते पर हम हमारे देश को प्रसिद्ध करें। और आज दिन तक जो उन्होंने उदाहरण ये अपने स्वयं के द्वारा प्रस्थापित किया, आज दिन तक उनको हम पूछते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने इनको भगवद गीता ऑफर किया था, और केवल जितने सारे नेताओं को प्रभुपाद ने बताने की कोशिश की उनमें से केवल लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने प्रभुपाद का समर्थन किया और प्रभुपाद को कहा कि मैं अपना पूरा सपोर्ट देता हूं आपको कि आप इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाइए। तो ये उदाहरण आज का जो श्लोक जिसके अंदर भगवान बोल रहे हैं अतंद्रित और मम वर्तमानो वर्तन्ते, कि मेरे पद चिन्हों पर जो चलेगा मनुष्य पार्थ सर्वशा पूर्ण रूपेण। तो यदि ऐसे नेता और हमारे देश में हो जो अपने उदाहरण से सिखाएं कि कैसे देश को चलाना चाहिए, क्या हमारी देश की नीतियां होनी चाहिए, तो अवश्य ही ये देश का जो रुख है वो बहुत ही सुधर जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे कि जब ऐसे कर्तव्यों का पालन नहीं होता तो एक और परिणाम उस तंद्रा का क्या है, वर्ण संकर की उत्पत्ति, और इसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार। जय श्री प्रभुपाद की।